ओम शांति। राजयोग की सही विधि समझने के बाद स्वयं को परमधाम निवासी अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा निश्चय कर मन बुद्धि के द्वारा निराकार दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव पिता से सर्व संबंध जोड़कर उनसे सर्व गुणों और शक्तियों का अधिकार प्राप्त कीजिए। परम प्यारे शिव बाबा, आप कितने महान हैं। ऊंचे से ऊंचे हैं आप। ज्योति स्वरूप हैं, सर्व गुणों के सागर हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिवान हैं। शिव बाबा, आप ही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता हैं। बाबा, आपने मुझे अपना बच्चा बनाकर परम प्यार देकर मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिटा दी। बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा अति इंद्रिय सुख और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा, आप मेरे परम शिक्षक भी हो। आपने मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर त्रिनेत्री बना दिया। तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिलोकी नाथ और त्रिकालदर्शी बना दिया। आपने ही हमें ज्ञान दिया कि सतयुग के आरंभ में हम कितने पावन थे, देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा, अब आप फिर से वही देवता बना रहे हो। आपकी याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। आप ही मेरे सच्चे सच्चे सतगुरु भी हो। पतित पावन हो। अब मेरी जीवन धन्य धन्य हो गई है। जो पाना था वह मैंने आपसे सब कुछ पा लिया है। बाबा, आपसे सर्व संबंध जोड़कर मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। राजयोग शिविर का पांचवा लेसन है, राजयोग द्वारा विकारों पर विजय। राजयोग द्वारा हम ऐसी शक्ति अनुभव करते हैं जिससे सहज ही विकारों को जीत सकते हैं। आज के युग को कलयुग कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार व्याप्त हैं। इन्हीं विकारों के फल स्वरूप ही मनुष्य दुख और अशांति का अनुभव कर रहा है। मानव ही अपने कर्मों से गिरकर जब विकारों के वशीभूत हो विकर्म करने लग पड़ता है तब वह दानव कहलाता है, और जब वह राजयोग द्वारा अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर पावन बनता है तब देवता कहलाता है। शिव बाबा हम सब आत्माओं को कहते हैं, हे बच्चे, तुम ही पावन देवता थे। परमात्मा ने जब मनुष्य को रचा तो अपने जैसा रचा, यानी सर्व गुणों से संपन्न देवता रूप में रचा। परमात्मा के रचे हुए सभी पावन देवताएं अब कहाँ चले गए? शिव बाबा कहते हैं कि सभी सतयुगी पावन देवताएं अपने श्रेष्ठ कर्मों की कमाई भोग कर अब कलयुग में विकारी संबंध में आने के कारण विकर्म यानी पाप कर्मों का बोझा ढोते हुए चल रही हैं। वे विकार कैसे उत्पन्न हुए? वास्तव में श्रेष्ठ कर्मों की कमाई समाप्त करने के बाद ही इन विकारों की उत्पत्ति होती है, और इन सब की जड़ है देह अभिमान। मनुष्य देह के आधार पर पुरुषपन या स्त्रीपन के भान में आकर अनेक प्रकार के विकारों के वश हो जाता है। सबसे पहला विकार आता है काम विकार। इसी के फल स्वरूप वह अपने ओज और तेज को खोकर शक्तिहीन बनने के कारण अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों का भी शिकार होने लगता है। फिर काम विकार के परिणाम स्वरूप वह जो विकारी संतान पैदा करता है उसके दुख में दुखी रहने लगता है, और उनमें ममत्व भाव रख सारा दिन उन्हीं के लिए कमाने तथा घर बनाने में लगा रहता है। मोह के वशीभूत होकर अपने विवेक को भी खो बैठता है और क्रोधी स्वभाव का बन जाता है। देह के आधार पर जिसे वह अपनी स्त्री पुत्र पौत्र आदि मानता है उनकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वह अधिकाधिक धन पैदा करने का यत्न करता है। इसके लिए वह लोभ के वश हो जाता है, परंतु फिर भी लोभी नर की तृष्णाएं कभी नहीं खत्म होती। जब वह संतति पैदा कर लेता है और घर तथा धन इकट्ठा कर लेता है तब सोचता है, मैं एक बड़ा सेठ हूँ, चार बच्चों का पिता हूँ, एक ऊंचे खानदान का व्यक्ति हूँ, बड़े बड़े लोगों से मेरा बैठना उठना है। इस प्रकार का उसे अहंकार हो जाता है। देह अभिमान ही सभी दुखों का कारण है। अतः जीवन को सुखी और शांतिमय बनाने के लिए घर गृहस्थ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि देह अभिमान को छोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए आत्मनिष्ठ या योग युक्त होना जरूरी है। काम विकार यह आत्मा का महावैरी दुश्मन है। एक कहावत है, कामी पुरुष संसार में काम कटारी चलाए, आदि मध्य अंत हो दुखी नरकवासी बन जाए। इस काम विकार ने मनुष्य को नरकवासी बना दिया है। इसी विकार के कारण ही कई राजाओं की राजाई चली गई और देवताएं भी अपना देवत्व खोकर मनुष्य बन गए। इस विकार को जीतने से ही मनुष्य फिर से देवता बन सकता है। अब जीतने की युक्ति क्या है? परमात्मा ने हमें बहुत सहज युक्ति बताई है, और वह युक्ति है भाई भाई की दृष्टि। अगर हम स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं और अन्य को भी आत्मा रूप में देखते हैं तो हम आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई बन जाते हैं। इस संबंध के नाते से हम अनुभव करते हैं कि दृष्टि पवित्र बन जाती है, और दूसरी बात, आत्मा का सच्चा धर्म ही पवित्रता है। जब आत्मा परमधाम में थी तब वह पवित्र थी, और पवित्र होने के कारण सर्व गुणों से संपन्न थी। पवित्रता आत्मा का अनादि गुण भी है, तो पवित्रता आत्मा का आदि गुण भी है। जब ये निश्चय हो जाता है तो पवित्रता के गुण को धारण करना अति सहज अनुभव होता। दूसरा विकार है क्रोध विकार। यह भी कोई कम नहीं। कहावत है कि जिस घर में क्रोधी होता है उस घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। परंतु वास्तव में पानी तो क्या, क्रोधी मनुष्य का खून भी सूख जाता है। जब मनुष्य को क्रोध आता है तब वह परिणाम को नहीं सोच सकता। इसी क्रोध के कारण घर जलकर राख हो जाते हैं और डेरे वीरान हो जाते हैं। अब क्रोध के कई रूप हैं और उसके आने के भी कई कारण हैं। क्रोध अनेक रूपों में समाया हुआ है, जैसे उद्वेग, द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, रुष्ट होना, हिंसा, वैर विरोध की भावना इत्यादि। ये सभी रूप मनुष्य को अशांत करने वाले हैं। क्रोध आने के भी कई कारण हैं। कोई कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। इच्छा के विरुद्ध किसी ने कोई कार्य कर लिया तो गुस्सा आता है। अपने ज्ञान के खिलाफ बात हो जाती है तब भी क्रोध आता है। कभी कभी मान इज्जत न मिलने पर भी क्रोध आता है। कभी सोचते बहुत हैं परंतु इतना कर नहीं पाते हैं तब भी गुस्सा आता है। कई तो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए डर के कारण भी क्रोध कर लेते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है क्योंकि वह सोचता है कि अगर रोब नहीं रखेंगे तो कर्मचारी काम ठीक नहीं करेंगे या गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज क्रोध के विकराल रूप के कारण ही अणु बम बने हैं। लेकिन क्रोध ये आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। आत्मा का स्वाभाविक गुण है ही शांति। तो अगर हम कुछ बातों को समझ जाएंगे तो क्रोध को जीतना बहुत सहज है। सबसे पहली बात, हम योगियों का जीवन ही अनेक भोगियों से भिन्न है। सबसे पहली बात यह निश्चय करना है कि हम राजयोगी हैं। योगियों का जीवन और तरीका दुनिया वालों से अलग है। योगियों के विचार दुनियावी विचार नहीं है। गुस्से से कोई कार्य करवाने से जो काम होगा उनसे 10 गुना ज़्यादा काम प्रेम से हो सकता है। गुस्से की जगह मित्रता का काम लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। डर से काम करने वाला भी बहुत नुकसान कर सकता है। दूसरी बात, अगर हम यह समझ लेते हैं कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, यह संसार एक नाटक है, ये हो नहीं सकता कि जो मैं सोचूं वही सब सोचे। हर आत्मा अपना पार्ट इस संसार नाटक में बजा रही है। इस संकल्प के आने से क्रोध कभी नहीं आएगा, बल्कि दूसरे की राय को भी हम महत्व देंगे। यह भी संकल्प कर सकते हैं कि यह कोई कर्मों का हिसाब किताब है जो चुकतू हो रहा है। तीसरी बात, कभी किसी की कमजोरी देखकर सहन नहीं होता है तो भी उस समय क्रोध की बजाय उस पर रहम आना चाहिए। राजयोग यह तो कहता है कि भूल करने वाले पर क्रोध न करो बल्कि उसकी सहायता करो, उसकी भूल निकालो, न कि स्वयं क्रोध कर भूल करो। जब हमें दूसरों का क्रोध करना पसंद नहीं तो हमें अपना क्रोध भी निकालना चाहिए, वरना हम स्वयं भी अपराधी ठहरे जाएंगे। चौथी बात, अगर हम ये निश्चय करेंगे कि हमें सुख देना है तब हमें सुख मिलेगा। जितना हम दूसरों को सुख देंगे उतना ही हम सुखी होंगे। इस निश्चय से हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। साथ साथ यह भी सोचना है कि अगर मेरा परिवर्तन होगा तो अन्य का भी परिवर्तन होगा, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। तीसरा विकार है लोभ विकार। यह विकार भी बहुत कड़ा है। वैसे तो लोभ एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को बड़ा मीठा लगता है। अतः जैसे चींटियां चीनी की चाशनी से आकर्षित होकर उसमें फंस जाती है, वैसे ही जिस मनुष्य को लोभ का चस्का लग जाता है वह भी उसी के स्वाद में जीवन खो देता है। आज इस लोभ विकार के कारण ही तो मिलावट करना, रिश्वत लेना, काला बाजारी करना, गरीबों का खून चूसना, किसी को मार डालना, इसी प्रकार के पाप कर्म हो रहे हैं। लोभी मनुष्य सदा असंतुष्ट और अतृप्त रहता है। जिसकी प्यास बुझती नहीं उसे जीवन में सुखी कैसे कहेंगे। वह सदा ही 99 के चक्कर में रहता है, क्योंकि उसकी सदा ही मांगे बनी रहती है। लोभी मनुष्य को ईर्ष्या भी बहुत होती है। वह दूसरे के धन को अपने धन से अधिक होता देख सहन नहीं कर सकता। ऐसी ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जलता हुआ मनुष्य सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। लोभ केवल धन का ही नहीं परंतु हर प्रकार के सुख सुविधा के साधन का भी हो सकता है। अगर किसी को यह साधन उपलब्ध हो भी जाए परंतु मन की शांति और संतोष रूपी धन न हो तो भी वह सुखी कहाँ ठहरा। इसलिए कहावत है कि लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, निर्लोभी सदा सुखी, ईश्वर हरदम देत। लोभ छोड़ने का यह भाव नहीं है कि धन नहीं कमाना है, परंतु आज का मनुष्य पेट के लिए नहीं बल्कि पेटियों में जमा करने के लिए कमाता है, और उसके लिए जितने अनीति के तरीके हैं वह सब अपनाता जाता है। अतः मनुष्य को सदा नेक तरीके से उचित कमाई करनी चाहिए। इससे मनुष्य को बहुत आत्मिक बल मिलेगा और परमात्मा से उसकी प्रीत बढ़ेगी। प्राय मनुष्य ये सोचता है कि अभी तो खूब धन कमा लूं, बुढ़ापे में ईश्वर को याद कर लूंगा। सबसे पहले क्या यह भरोसा है कि वह बुढ़ापे तक जिएगा? फिर बुढ़ापे में क्या मनुष्य लालच छोड़ देता है? जीवन भर लालच करते करते तो बुढ़ापे में लोभ का संस्कार और ही अधिक पक्का हो जाता है। इसलिए कहावत मशहूर है, आप भय बूढ़े, तृष्णा भय जवान। अतः ये तो अभी छोड़ने से ही छूटेगा, उसकी पालना करने से तो बढ़ता ही जाएगा। लोभ छोड़ने की कई युक्तियां हैं। पहले तो हम यह निश्चय कर लें कि अब सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था आ चुकी है। जबकि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है तो इस दृष्टि में सभी वृद्ध अवस्था में ही हैं। इसलिए अब सबको परम पिता परमात्मा शिव की स्मृति में रहने का अभ्यास करना चाहिए। अतः इसी के बारे में सोचते रहना और जीवन का सारा मूल्यवान समय इसके पीछे लगाना बुद्धिमता नहीं है। दूसरी बात, अगर ये निश्चय हो कि जो भी हम धन कमा रहे हैं ये साथ नहीं चलने वाला है। सिकंदर राजा का मिसाल है कि उसने सारे विश्व को जीतने की कोशिश की, लेकिन जिस समय वह मर रहा था, युद्ध के मैदान में था, अपने सिपाहियों को कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकालना और ये दुनिया को साबित करके दिखाना कि सिकंदर राजा हाथ खाली गया। साथ साथ अगर हम ये भी सोचें कि ज्ञान धन ही आत्मा का सच्चा धन है, यही सच्ची कमाई है, इस निश्चय के आधार से हम ज्ञान धन को जमा करने का लक्ष्य रखेंगे। चौथा विकार मोह विकार, यह भी कोई कम नहीं है। परमात्मा शिव धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को जो गीता का ज्ञान देते हैं उसका उद्देश्य ही है आत्माओं को नष्टो मोहा तथा स्मृति लब्धा बनाना। क्योंकि मोह भी बहुत दुख देने वाला विकार है। मोह की रस्सियाँ बड़ी सूक्ष्म हैं जो दिखाई नहीं देती, परंतु ये स्थूल रस्सियाँ और जंजीरों से भी अधिक कड़ी है और जन्म जन्मांतर तक नहीं टूटती है। स्थूल रस्सियाँ तो मनुष्य को बाहर से बांधती है, परंतु मोह की रस्सियाँ तो आत्मा को बांधती है। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि फिर भी मनुष्य इन रस्सियों से छूटने की कोशिश ही नहीं करता। मोह वाला मनुष्य न तो सत्य असत्य का निर्णय कर पाता है और न ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, बल्कि मृत्यु से पहले ही वह कई बार मोहवश मरता है। अतः मोह भले ही दिखाई नहीं देने वाला छोटा सा विकार है, परंतु वास्तव में वह सबसे खोटा है। एक कहावत है कि मोह के बंधन कड़े, मोह में सबका श्वास, एक ईश्वर से मोह करो तो छूटे दुख की फांस। मनुष्य में मोह तब उत्पन्न होता है जब वह समझता है कि अमुक चीज उसकी अपनी है, दूसरे की वस्तु में मोह नहीं जाएगा, दूसरे की वस्तु खो जाने पर उसे दुख नहीं होगा, लेकिन अपनी वस्तु खो जाने पर उसे बड़ा दुख होगा। मनुष्य जब समझता है कि अमुक व्यक्ति मेरा सहारा है या अमुक व्यक्ति मेरा कार्य सिद्ध करेगा, उससे ममता का नाता जोड़ लेता है, अपनी रची हुई रचना में भी बड़ा मोह हो जाता है। तो मोह को जीतने की बहुत सहज युक्ति शिव बाबा ने हमें सिखाई है। शिव बाबा कहते हैं, सदा याद रखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कोई भी सांसारिक व्यक्ति या पदार्थ अपना नहीं है, मनुष्य की अपनी देह भी उससे छूट जाने वाली है, तो बाकी रहना ही क्या है जिससे वह मोह ममता रखे। जबकि इस संसार में सब चीजें अस्थिर है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, तब फिर उसमें मोह रखना यानी स्वयं को दुखी करने की युक्ति रचना। अब तो वैसे भी सब कुछ छूटना ही है, तो क्यों नहीं पहले से ही सब तरफ से बुद्धि निकाल शिव बाबा में लगाएं, क्योंकि वही सबका सहारा है और वही सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु है। पांचवा विकार है अहंकार। स्वयं को देह समझने से ही भौतिक बातों का अहंकार आता है। अहंकारी मनुष्य एक खजूर के पेड़ की तरह है। जिस प्रकार खजूर का पेड़ सुंदर दिखाई देते हुए भी वह किसी काम का नहीं, क्योंकि वह न तो यात्रियों को छाया दे सकता है और न ही अपने फलों और फूलों से किसी को सुख दे सकता है। इसी प्रकार अहंकारी मनुष्य के गुण होते हुए भी उनसे वह किसी को सुख नहीं दे पाता है, और किसी को सुख न देने के कारण वह स्वयं भी अहंकार के नीचे छिप जाता है। लोगों की दृष्टि में उसका अहंकार ही खटकता है। अहंकारी मनुष्य में न ज्ञान टिक सकता है, न ही उसमें दूसरे सद्गुणों की धारणा हो सकती है, न ही वह दूसरे के मन में प्रेम तथा सम्मान का स्थान ही प्राप्त कर सकता है। अहंकार को मिटाने की भी बहुत युक्तियां हैं जो राजयोग के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अगर हम ये समझ लेते हैं कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थिर है और किसी के हाथ नहीं आनी है, तो फिर अहंकार किस बात का। धन का अहंकार मिटाने के लिए याद रखना चाहिए, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट जाए, किसी की आग जलाए। भस्म होने वाली वस्तु का अभिमान तो अज्ञानता है। आत्म अभिमानी होकर अगर ये निश्चय किया जाए कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, सभी आत्माओं का धाम एक ही परम धाम है, यहाँ कर्म क्षेत्र पर केवल कर्म करने लिए आए हैं, तो इस क्षणिक देह, कुल, जाति और देश का अहंकार मिट जाएगा। स्वयं को विश्व सेवाधारी निश्चय करने से अहंकार सहज मिट सकता है। सेवाधारी तो सदा सेवा में लगा रहता है, उसमें अहंकार किस बात का। उसे तो बहुत ही मधुरता और नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। जो जितना गुणवान होगा वह आम के पेड़ की तरह झुकेगा, परंतु उसका झुकना झुकना नहीं है, वह तो झुककर सबको झुकाने के निमित्त बन जाता है, और इसी अहंकार के कारण ही तो सारा संसार नरक बन चुका है। अगर सभी का अशुद्ध अहंकार मिट जाए तो इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। नर अहंकार जो देह का नरक में ले जाए, पर अहंकार शुद्ध आत्मा का स्वर्ग धाम पहुंचाए। विकारी मन को सुख कहां, ज्ञान बिन तले न विकार, देह अहंकार जो मिट चले, रहे न बाकी चार। राजयोगी शिव पिता के साथ सर्व संबंध जोड़कर विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इन विकारों पर जीत पाने से मनुष्य जगत जीत अर्थात सारे विश्व का मालिक देवता बन सकता है। ओम शांति। राजयोग शिविर का छठा विषय है राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति तथा दिव्य गुणों की धारणा। बहुत से लोग योग को एक आध घंटे की कोई क्रिया समझते हैं, परंतु वास्तव में योग तो जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण का अथवा एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति का नाम है। राजयोगी का जीवन, उसका आचार व्यवहार, उसकी रीति नीति भोगी से बिल्कुल अलग और अलौकिक होती है। निसंदेह राजयोग एक अभ्यास है, पुरुषार्थ या क्रिया विशेष का भी नाम है, परंतु ये एक ऐसी महान साधना या जीवन को दिव्य बनाने की कला है जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं ही महान बन जाता है और सारे विश्व को भी महान बना देता है। राजयोगी घर गृहस्थ का त्याग कर जंगलों में कुटियाएं बनाकर या गुफाओं में जाकर योग नहीं लगाता, परंतु वह तो समाज में रहकर पारिवारिक सामाजिक व्यावहारिक समस्याओं को बड़े ही सुचारू रूप से पार करता हुआ कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा जीवन व्यतीत करता है। उसकी स्थिति हर परिस्थिति में एक रस रहती है। जिस प्रकार बैटरी का संबंध बिजली घर के साथ होने से बैटरी में फिर से शक्ति भर जाती है, उसी प्रकार सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव जो सर्व शक्तियों का स्रोत है, उससे संबंध जोड़ने से आत्मा में कई शक्तियों की प्राप्ति होती है जो हर एक के जीवन में अति आवश्यक है। इन्हीं शक्तियों की कमी के कारण ही घर घर में आज कलह क्लेश बढ़ता जा रहा है और फलस्वरूप मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है और नई नई बीमारियां उत्पन्न होती जा रही है। लेकिन राजयोग इन सब बातों को जड़ से समाप्त कर लेता है। वास्तव में राजयोग के द्वारा हमारे अंदर वह शक्ति आती है जिससे ये विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जड़ से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इन विकारों की जड़ है ही देह अभिमान। और जैसे जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते जाते हैं, अपने आप को आत्मा निश्चय करते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा के गुण आने से ये शक्तियाँ भी स्वतः आने लगती है। राजयोग द्वारा सबसे पहले हमारे अंदर आती है सहन करने की शक्ति। जब हम ये निश्चय कर लेते हैं कि हम आत्मा हैं और हमारा स्वधर्म शांति है, हम शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हैं और शांति धाम की निवासी है, तो हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे अशांति फैले। इस निश्चय से सबसे पहले अंदर सहन करने की शक्ति आती है। कोई व्यक्ति अगर गालियां देता है तो भी मैं अपने शांति के गुण को नष्ट क्यों करूं? जैसे एक बच्चा किसी आम के पेड़ को पत्थर मारता है, लेकिन वह आम का पेड़ उसके जवाब में बच्चे को फल देता है। एक जड़ वस्तु में इतना गुण है तो चैतन्य में तो इससे भी ज्यादा होने चाहिए, लेकिन आज का मनुष्य तो बस ईंट का जवाब पत्थर से ही देना जानता है। राजयोगी इस संदर्भ में सहनशील रहेगा, क्योंकि वह जानता है कि दूसरा व्यक्ति तो अज्ञानता के कारण इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, परंतु वह स्वयं तो ज्ञानवान है। अगर वह भी अज्ञानी के सदृश कर्म करे तो फिर अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर ही क्या रहा? वह स्वयं शांत स्वरूप बन शांति का दान देगा। वैसे भी आप जानते हैं, क्रोधी मनुष्य की बुद्धि में उस समय तो कोई भी बात बिठाई नहीं जा सकती, तो राजयोगी सहन शक्ति को धारण कर उसकी बात मन में स्वीकार ही नहीं करता जो जवाब में कुछ कहना भी पड़े। वैसे भी एक पत्थर हथौड़ी और छेनी की ठोकरें सहन करने के बाद ही तो पूजनीय मूर्ति बनता है। महान आत्माओं ने अपनी महानता सहन शक्ति के आधार पर ही तो प्राप्त की। शिव बाबा भी अज्ञानी आत्माओं की कितनी गालियां सहन करता है, तो मैं अगर शिव बाबा की संतान हूँ और मैंने अगर कुछ सहन कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हुई। कोई भी व्यक्ति 9 बार सहन करने के बाद अगर 10वीं बार सहन नहीं करता तो भी उसे सहनशील नहीं कहेंगे। इसलिए मुझे सहन करते जाना है, इस निश्चय से राजयोग का अभ्यास कर आगे बढ़ते रहना है। राजयोग के द्वारा दूसरी शक्ति आती है, समाने की शक्ति। वास्तव में ये शक्ति भी बहुत महान शक्ति है। जैसे सागर अपने अंदर सब कुछ समा लेता है, चाहे आप उसमें किचरा डालिए, चाहे आप उसमें हीरे मोती डालिए, अगर हल्की चीज होगी तो सागर अपने लहरों के आधार से उनको किनारे पर फेंक देगा, और अगर भारी वस्तु होगी तो अपने अंदर समा लेगा। लेकिन सागर का स्तर कभी भी गंदा नहीं होगा। वैसे ही राजयोगी का हृदय भी सागर के समान विशाल, गहन और स्थिर होने के कारण वह सब कुछ समा लेता है, चाहे मान अपमान हो, चाहे स्तुति निंदा हो, चाहे सुख दुख हार जीत हो, लेकिन सब में वह समान रहकर अपने अंदर इन सब को समा लेता है। राजयोगी में वसुधैव कुटुंबकम की भावना इतनी होती है, क्योंकि वह जानता है कि सब परमात्मा के बच्चे हैं, उसके भाई हैं, तो जैसे भाई की भूलें बताई नहीं जाती, वैसे राजयोगी सबकी भूलों को अपने अंदर समा लेता है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की भूलें समा लेती है, वैसे राजयोगी माँ की तरह अनेक आत्माओं की कमियों को अपने अंदर समा लेता है। अगर किसी की भूल बताना आवश्यक भी होती है तो राजयोगी ईर्ष्या द्वेष में आकर उसके समक्ष अथवा अन्य के आगे उसका वर्णन नहीं करेगा, परंतु शुभ चिंतक बन समय और परिस्थिति को देखकर श्रेष्ठ भावना से उसे समझाएगा। अगर भूल करने वाला व्यक्ति नहीं भी समझता है तो वह स्वयं की स्थिति नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन भूल करने वाले का भाग्य समझकर उसको समा देगा और वहीं समाप्त कर लेगा। वह अन्य आत्माओं के अवगुणों को नहीं देखेगा, केवल उनके गुणों को ही देखकर उसे धारण करने का लक्ष्य रखेगा और सदा हर्षित रहेगा। इसी प्रकार राजयोग के द्वारा तीसरी शक्ति आती है, परख शक्ति। राजयोगी परख शक्ति सुचारू रूप से धारण कर लेता है, क्योंकि जैसे एक जौहरी कसौटी के आधार से असली व नकली सोने को परख सकता है, वैसे ही राजयोगी भी ज्ञान की कसौटी के आधार से सच व झूठ को परख लेता है। सच्चा व्यक्ति उसे सहज ही पहचानने में आ जाता है, झूठे व्यक्ति को भी वह तुरंत परख लेता है। शिव बाबा की याद से साक्षीपन की स्थिति आने से जो हर व्यक्ति वस्तु व परिस्थिति होती है उसके सामने वह स्पष्ट दिखाई देने लगती है, अथवा परख शक्ति वह सहज धारण कर लेता है। इसी प्रकार चौथी शक्ति है, निर्णय शक्ति। राजयोगी के मन बुद्धि की तार परमपिता परमात्मा शिव के साथ जुटी होने के कारण वह तराजू की तरह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। उसको शिव बाबा से कई प्रकार की प्रेरणाएं प्राप्त होती है, जिसके आधार पर कार्य करने से उसे सफलता भी मिलती है। बुद्धिवानों से बुद्धिवान शिव बाबा से बुद्धि योग लगाने से योग्य समय पर वो निर्णय भी सहज कर लेता है और साथ साथ उसकी बुद्धि का विकास होने के कारण निर्णय शक्ति और भी तेज होती जाती है। राजयोग के द्वारा हमारे अंदर एकाग्रता की भी शक्ति बढ़ती जाती है और इस एकाग्रता की शक्ति के कारण मन के अंदर इतनी प्रेरणाओं का वह अनुभव करता है जो उसमें व्यर्थ संकल्प न आने के कारण केवल शुद्ध संकल्प ही आते हैं और वह सहज निर्णय कर लेता है। आज इंसान के अंदर निर्णय क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अनेक प्रकार के व्यर्थ विचार, अशुद्ध विचार उसके मन में आते हैं। लेकिन राजयोगी इन सब अशुद्ध और व्यर्थ विचारों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और केवल शुद्ध संकल्प ही वह मन में लाने के कारण सहज निर्णय कर लेता है। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। यह भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। वास्तव में किसका सामना करना है और किसको सहन करना है यह भी राजयोगी जानता है। राजयोगी मनुष्य का सामना नहीं करता है, मनुष्य को तो हमें सहन करना है, लेकिन राजयोगी परिस्थितियों का सामना बहुत सहज रीति से कर लेता है। सबसे दुखदायक परिस्थिति जो किसी के जीवन में आ सकती है वह है अपने नजदीक के संबंधी की मृत्यु। राजयोगी इस घटना का बगैर किसी दुख और वेदना के सामना करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा तो कभी भी मरती नहीं है। आत्मा एक अभिनेता की तरह इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है और शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है। शरीर तो केवल एक वस्त्र के समान ही तो है। गीता में भी है कि आत्मा जब शरीर धारण करती है तब जन्म कहते हैं, जब शरीर छोड़ती है तब मृत्यु कहते हैं। वास्तव में मृत्यु तो किसी का भी होता नहीं। आत्मा तो अमर अविनाशी है और शरीर तो है ही विनाशी, तो बाकी किसकी मृत्यु? वास्तव में हम कह सकते हैं कि किसी की मृत्यु पर राजयोगी यही सोचेगा कि आत्मा ने एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ा है और अपने कर्मों के अनुसार वह अन्य वस्त्र धारण करने लिए चली गई है, दूसरा अभिनय करने। राजयोगी के सामने अगर सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप धारण करके भी आती है तो भी राजयोगी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने केवल परमात्मा को ही अपना सच्चा साथी माना है। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान? जिसका साथी स्वयं परमात्मा हो और परमात्मा ही उसका सच्चा सहारा हो तो आत्मा रूपी दीपक सदा जागती रहेगी, उसको कोई भी माया का तूफान बुझा नहीं सकता है। और ही वह आत्मा परमात्मा से शक्ति लेकर ज्ञान प्रकाश के द्वारा अन्य आत्माओं को भी रास्ता दिखाती रहेगी। अतः शिव बाबा की याद में राजयोगी आत्मा के अविनाशीपन ड्रामा की ढाल तथा सर्वशक्तिवान पिता की संतान होने के फलस्वरूप अपने शक्ति रूप में स्थित होकर हर परिस्थिति का सामना वह सहज कर लेता है। छठी शक्ति आती है सहयोग शक्ति। आज सहयोग शक्ति के कमी के फलस्वरूप ही कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती है। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण सहयोग देना नहीं चाहता है। आज देखा जाए संसार में तीन प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक है दानवी वृत्ति वाले मनुष्य, दूसरे हैं साधारण मानवी वृत्ति वाले मनुष्य, और तीसरे हैं योगी या दैवी वृत्ति वाले मनुष्य। दानवी वृत्ति वाले मनुष्य सोचेंगे, मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा, अर्थात अपना सहयोग देने के बजाय अन्य की वस्तु पर भी अपना अधिकार रखेंगे। मानवी वृत्ति वाले सोचेंगे, मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। उनमें अगर स्वार्थ नहीं है तो परोपकार की भावना भी नहीं है। परंतु राजयोगी कहेगा, न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब कुछ परमात्मा का है। वह केवल अपनी चीजों से ही अनासक्त नहीं रहेगा, परंतु अन्य को भी अनासक्त रहने की प्रेरणा देगा। वह अपने तन मन और धन को परमात्मा की अमानत समझकर ट्रस्टी होकर चलेगा और उसे ईश्वरीय कार्य में लगाकर सहयोगी बनता जाएगा। वह स्वयं भी कार्य करके अनेकों को सिखाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के कार्य में एक एक के सहयोग की अंगुली मिलने से इस कलयुगी पहाड़ को उठाकर इसके स्थान पर सतयुग को लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की दुनिया में सहयोग न मिलने का एक कारण तो यही है कि हर एक समझता है ये मेरा है ये तेरा है, जहां मेरा है वहां मेरा ही रहेगा, तेरे को मैं क्यों सहयोग दूं। इसलिए सहयोग शक्ति नहीं मिलती। और दूसरा कारण है कि हर एक व्यक्ति यही समझता है कि दूसरा बदले, दूसरे में परिवर्तन आए, लेकिन वह स्वयं बदलना नहीं चाहता। परंतु शिव बाबा ने हमें सिखाया है कि दूसरा बदले या न बदले, लेकिन मुझे बदलना है और सबको सहयोग देना है। जब मैं बदल जाऊंगा तो मेरे बदलने से सारा संसार बदल जाएगा। इसलिए एक कहावत है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। और शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम हिम्मत रखो, मैं मदद देने के लिए तैयार हूँ। तो शिव बाबा की भी मदद मिलती है और अनेक आत्माओं की भी मदद मिलती है, और फलस्वरूप राजयोगी स्व के परिवर्तन द्वारा विश्व का परिवर्तन सहज कर लेता है। राजयोग के द्वारा सातवीं शक्ति आती है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है और जब चाहे उन्हें फैला देता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार मालिक बन अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करता है और जब चाहे विदेही एवं शांत स्वरूप बनकर अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। इस प्रकार की विदेह अवस्था में रहकर वह अनेक बंधनों से स्वयं को मुक्त कर सकता है और जब भी कोई उसमें विकार आने की संभावना हो, अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेने के कारण उन विकारों से वो बच जाता है। राजयोग के द्वारा आठवीं शक्ति आती है, समेटने की शक्ति। ये शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन राजयोग के द्वारा हमें यह जानकारी मिली है कि अब सृष्टि चक्र का अंतिम समय होने के कारण वापस घर यानी परमधाम जाने का समय आ चुका है। जिस प्रकार एक मुसाफिर यात्रा पर जाते समय आवश्यक वस्तुएं ही अपने साथ ले जाता है, इसी प्रकार राजयोगी भी अपनी आत्मा में दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संस्कारों का ही संग्रह करता है, क्योंकि यही आत्मा के सच्चे साथी बनकर उनके साथ जाते हैं। वह और सब तरफ से अपना हिसाब किताब चुकतू कर लेता है और एक ही लगन में मग्न रहता है कि उसे वापस परमधाम जाना है। अब यह अवश्य ही ध्यान रखना होगा कि किस समय किस शक्ति का प्रयोग करना है। सहन शक्ति धारण करने के समय अगर सामना करने की शक्ति का प्रयोग किया तो और ही समस्या खड़ी हो सकती है, और सामना करने के बदले अगर सहन कर लिया तो भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है परख और निर्णय शक्ति। राजयोगी आदि मध्य और अंत सोच समझकर कदम आगे बढ़ाता है। उसमें सहन शक्ति होने के कारण धैर्यता का भी गुण होता है। कहा जाता है कि धीरज का फल सदा मीठा होता है। इसलिए राजयोगी हर कदम में सदा सफलता का अनुभव करता है। वह अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करके अंतर्मुख अवस्था बनाने के कारण अपनी अंदर जांच करता रहता है और फलस्वरूप उसका हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ होता जाता है, उसकी वाणी में मिठास आती जाती है। इसी 2.5 इंच की जिबान के लिए एक कहावत है कि चाहे तो वह किसी को तख्त पर बिठाए और चाहे तो किसी को तख्ते पर चढ़ाए। इसी प्रकार तलवार का घाव तो कुछ समय के लिए मिट जाएगा, लेकिन जिबान तो किसी के हृदय पर किया हुआ घाव अमिट बना लेती है। राजयोगी हंस के समान सभी के गुण रूपी मोती ग्रहण करता है, अतः वह सदा हर्षित भी रहता है और हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। राजयोग द्वारा इन दिव्य गुणों और शक्तियों की धारणा होने के कारण राजयोगी समाज के लिए एक प्रेरणादायक अंग बन जाता है। वह अपने स्व परिवर्तन द्वारा पहले अपने परिवार को शुद्ध और पावन बनाता है, उसके बाद उसका समाज बदलने लगता है। समाज के बदलने से देश को बदलने में वह सहयोग दे सकता है और देश के बदलने से सारा विश्व बदल जाता है। इसी प्रकार राजयोगी स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन कर लेता है। अब राजयोग का सही ज्ञान प्राप्त करने के बाद, राजयोग की विधि जानने के बाद, अब हम परमात्मा शिव से, जो सर्वशक्तिवान है, उनसे शक्ति लेकर स्वयं में शक्ति भर अनेक आत्माओं को शक्तियों का दान देंगे। तो आप शांत हो जाएं, स्थिरता को अपनाएं और अपने अंदर इस प्रकार का मनन चिंतन करें। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं। मीठे बाबा, आप सर्वशक्तिवान हो, आप शक्तियों के भंडार हो, आपकी संतान मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। आपकी याद से मैं आत्मा अपने अंदर शक्तियों का अनुभव करती जा रही हूं। कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है? मैं प्रकाश स्वरूप, शक्ति स्वरूप। मैं आत्मा बीज स्वरूप हूं, लाइट हाउस और माइट हाउस की तरह। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अब मुझे इस शक्ति को सारे विश्व में फैलाना है। मैं मैं आत्मा। शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व में शक्ति का दान दे रही हूं। मैं माया जीत बन रही हूं। मीठे बाबा, आप रूप में ज्योतिर्बिंदु हो, लेकिन शक्ति में सूर्य के समान सर्वशक्तिवान हो। आपकी याद में मैं पावन बनती जा रही हूँ। इसी शक्ति द्वारा मेरा कल्याण होगा और सारे संसार का भी कल्याण होगा और यह सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। ओम शांति।